आप देख रहे हैं कि इन सूरतों का अंदाज तौहीद और आखिरत। जिस दिन अल्लाह इनको पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम जोम करते थे। किस चीज का जोम था? कि ये हमारी मदद करेंगे जिनके खौफ से तुम अल्लाह के दीन पे नहीं आते थे। कालल लजीना हक अलैहिमुल कौल, तो कहेंगे वो लोग जो अजाब के फैसले के मुस्तहिक हो गए। लिख लीजिए, हक अलैहिमुल कौल, क्या कौल? अजाब का फैसला, डिक्लेयर्ड, जिनका नतीजा अनाउंस हो गया कि ये फेल हो गए। वो क्या कहेंगे? रब बनाए हमारे रब। आप इसको सुनते बिल्कुल अपने आप को सामने रखें, किसी दूसरे को ना सोचें। क्यामत के दिन वो लोग जो अल्लाह के दीन की तरफ तो नहीं आए क्योंकि डर था कि उचक लिए जाएंगे, मनपसंद लीडरों के पीछे चले, क्योंकि वो लीडर्स कौन थे? आइए जरा इन आयतों को पढ़ लें, फिर उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहने लगे, रब्बना हाउलाई, ये हैं वो लोग, अल्लज़ीना अग़वैना, जिन्होंने हमको गुमराह किया था, जिन्होंने हमें मिसलीड किया था। ये हैं वो लीडर जिन्होंने हमें झूठी तसल्लियां दी, लोरियां दी, अपनी इताअत करवाई, जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे, हमारा पल्लू पकड़ लो तो हम चलेंगे। हर तरह के लीडर इसमें आएंगे, मजहबी लीडर, सियासी लीडर, अल्लाह ताला इनको पकड़, हम इनके पीछे चलते थे। ये वो लोग हैं जो वो कुरान पढ़ाते थे जिसको पढ़ के बिल्कुल डर नहीं लगता था। अल्लाह, ये हैं वो लोग जो इस्लाम के अहकाम से एस्केप रूट सिखाते थे। सो वट, क्या हुआ? आती नमाज तो पढ़ते हो, कोई बात नहीं, सो के आज के दौर में ऐसे ही होता है। यानी ये वो लीडर, ये वो हमारे बड़े थे जो सूद को भी जायज करा देते थे और जिनकी खूबसूरत बातों के सहर में हम आ जाते थे। देखिए, कोई अच्छा बोलता हो तो जरूरी तो नहीं है कि वो ठीक भी बोलता हो। किसी के पीछे चलने से पहले ये तो देखिए कि वो खुद क्या है। असल में इन आयतों की जवाब लिख लीजिए कि ये शख्सियत परस्ती का रद्द है। आंखें बंद करके जब लोग लोगों के पीछे चलते हैं और उनकी बातों पे आंखें बंद करके चलते हैं, तो कल क्यामत के दिन कहेंगे, अल्लाह, ये हैं वो जिन्होंने हमको अगवा किया था या जिनको हमने गुमराह किया था। अल्लाह अकबर, सोचिए जरा, अगवई ना हम कमा अगवई ना। वो जवाब में कहेंगे, हमने इनको गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह थे। हाँ, हमने किया, बिकॉज हमें खुद नहीं पता था। वही बात है ना कि डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट। किसी ऐसी गाड़ी वाले के पीछे चले जाएं जिसको खुद रास्ता नहीं पता, तो किधर ले जाएगा आपको? अगर हम खुद हिदायत पे होते तो इनको भी हिदायत का रास्ता दिखाते, जब हम भटके थे तो फिर इनको भी भटकाया। आज क्या हाल है? तबर्रना इलैक, हम तेरे सामने इनसे इजहारे बरात करते हैं, बेजार हैं हम इनसे। मां कानू या नयाबुदून, ये हमारी परस्तिश तो नहीं करते थे, ये तो अपनी ख्वाहिशों की करते थे, नफ्स के बंदे थे। ये आज ऐसी हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बातें। अब देखिए, मुकालमा है ना, पूरा लान तान हो रही है, वो उस पे मुर्दा डाल रहा है, वो उस पे मुर्दा डाल रहा है, एक दूसरे को बुरा भुला कहते रहे। वकील अदु शुरकाकुम, और इनसे कहा जाएगा, पुकारो अपने शरीकों को। फदाउहुम, तो वो इनको पुकारेंगे। फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो तो इनको कोई जवाब ही नहीं देंगे, कैसे दें, वो तो खुद फंसे हुए हैं। इतने मेरा वो अजाब, हर देख लेंगे अजाब को। लो अन्नहुम कानू यहतदून, काश वो हिदायत पाए हुए होते। उस दिन एक दूसरे को लान तान करेंगे। यहां तक एक केस पूरा हुआ, समझ आई ये बात की? रसूलों के मुकाबले में दूसरे लोग जो दीन को बदल के पेश करते थे और कहते थे कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मौलवी डराते हैं, ये मौलवियों ने जीना दोबर किया हुआ है, ये है वो है, दुनियावी फायदों की खातिर कभी शिर्क सिखाते, कभी बुत परस्ती कराते, कभी नबी का इनकार करते। अल्लाह कहते हैं, वहां जाके दोनों फंसे बैठे हैं, एक दूसरे से अब बदले ले रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। हर बात देखिए, इवन शिर्क है ना, उसके पीछे भी दुनियादारी है, शिर्क के पीछे भी उनके बिजनेस चलते हैं। ये जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, ये माल कमाने का कई तरह से जरिया बन जाते हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ अब एक और गिरोह है, उनका भी हाल सुन लीजिए। अल्लाह ताला अब नबियों की तरफ इशारा करते हैं। व यौम युनादीहिम, और जिस दिन अल्लाह इनको पुकारेगा, व यकूलू, तो वो पूछेगा, माज़ा अजब तुमुल मुरसलीन, कि तुम लोगों ने क्या जवाब दिया था रसूलों को। बात वाज़े, वो लोग जो सारी जिंदगी शख्सियात के पीछे भागते रहे, हीरोज वर्शिप करते रहे, पर्सनालिटी कल्ट का शिकार रहे, अल्लाह उनसे कहेगा, ये बताओ कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था, सुन्नत से क्या ताल्लुक था, रसूल के तरीकों से क्या था। अब उनका हाल क्या होगा? फअमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन, तो अंधी हो जाएंगी इन पर तमाम खबरें। फहुम ला यतसाअलून, तो वो एक दूसरे से पूछ भी ना सकेंगे। इसमें कई मुख्तलिफ मानी है। टैक्स के साथ तो क्या समझ आता है, कोई जवाब ही नहीं बन पड़ेगा कि नबी के साथ क्या मामला किया था। आज आप अपने ऊपर लिखिए, आज उम्मत मुस्लिमा, बाकी नबियों की उम्मत को छोड़े, उम्मत मुस्लिमा को आज के दौर में जो कुछ करते हम देखते हैं, क्यामत का दिन है। ठीक है, वो तो अपने बड़ों और उनको तसलियां और लोरियां देने वालों को कह ही चुके कि हम तुमसे बेजार, तुम हमसे बेजार। अल्लाह कहेगा बताओ उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों पे कितना लबैक का था। तो फअमियत अलैहिम लम्बा, जवाब ही नहीं बन पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं ना कि अकल ही मारी जाएगी, खबरें अंधी हो जाएंगी, नो मोर न्यूज। अब देखिए दुनिया में कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, तो बार 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 न्यूज बुलेटिन चलते हैं, बार बार चलते हैं, तिजारती खबरें बार बार हैं, कुछ भी है कुछ भी है। बाज़ दफ़ा जंगी हालात होते हैं, मिनट मिनट की खबर देते हैं, लेकिन क्यामत के दिन कोई खबर इनकी आगे नहीं आएगी, हत्ता कि एक दूसरे से सवाल का जवाब भी नहीं पूछ सकेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलों के तर्ज जिंदगी से मुख्तलिफ जिंदगी बसर की। सब बातों को पीछे करें, मुझे बीच में से बिल्कुल निकालें, आप बिल्कुल अकेले में खुद को बिठाएं और इमेजिन करें इस सारी मंजर को। क्यामत का दिन है, मैं नबी सल्लम की उम्मती हूँ, अल्लाह मुझसे पूछता है कि बताओ तुमने इस नबी के दीन का क्या जवाब दिया था, बताओ तरीका जिंदगी, रस्में, जीना मरना, पहनना ओढ़ना, हलाल हराम, सुन्नतें, नमाजें, इबादात, रोजे, हज, तुम ये बताओ तुम्हारा नबी के साथ ताल्लुक क्या था। अभी देखिएगा रबी अव्वल आने वाला है, जो नबी से हमारा सोया हुआ ताल्लुक 11 महीने के बाद उठता है ना, वो रबी अव्वल में देखिएगा, फिर जो हम झूमेंगे और हम रोएंगे और हमें हाल पड़ेंगे, लेकिन उस नबी की बात सुन के हम कहते हैं नहीं, नुतखत्तफ मिन अर्दीना, वो तो जी नबी थे, उनकी क्या बात करें, उन जैसा कौन हो सकता है, हम तो उनके पाँव की खाक के भी बराबर नहीं है। किसी ने कोटेशन भेजी कि फॉलो द सुन्ना, सुन्नत के कल्चर को मानो, क्योंकि इसका पेश करने वाला अल्लाह ताला है। ब्रांड्स होते हैं ना, सुन्ना ब्रांड को फॉलो करो, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग अल्लाह ने की है। आज हम सुन्नत तरीकों पे चलने को क्या कहते हैं, शादी नहीं होगी बच्चे की, लड़की की शादी नहीं होगी, यही सारा मजमून चल रहा है। आप अपने ऊपर लेके सोचिए, मैं अपने ऊपर लेके सोचती हूँ, अल्लाह के दीन का वो कौन सा फर्ज है जिस पे अमल करते वक्त मुझे ये खौफ आता है इसके बाद मेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, इसके बाद मैं नाकाम हो जाऊंगी। सोचिए जरा, आप आज देखिए, लोग कहते हैं जी ईमानदारी का कौन सा दौर है, जी आज के दौर में कैसे तिजारत हो सकती है बगैर हराम में पड़े, आज का दौर, आज का दौर, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने सारे कानून ही बदल दिए। और आज कहते हैं कामयाबी इसका नाम है कि जो चाहो करो, बस ठीक है, जो आपका दिल चाहता है वो करते जाइए और यही कुछ होगा आपके साथ। तो सोचने की बात है, दूसरों को छोड़िए, अगर हम में से किसी का ये मामला है, आज उस दिन के इस तरह परेशान होने से बचने की जरूरत है। कैसे? फम ममनता बवामिलहन, तीन काम कर ले, जो ईमान ले आए, रिवाइवल ऑफ ईमान, तौबा, ईमान तौबा कर ले पिछली जिंदगी पे शर्मिंदगी, आमाना ईमान ले आए दोबारा, और अमीला सालेहन नेक अमल करे, फसाई यकून मिनल मुफ्लिहीन, तो उम्मीद है कि वो फलाह पाने वालों में से होगा, कामयाब होगा। क्या मुश्किल है? देखिए अभी डेट शीट नहीं है, अभी कमरा इम्तिहान में आप नहीं गए, चले सारी नहीं पढ़ सकते, किसी से जरा हेल्प लेके कोई मोटी मोटी अहम चीजें पढ़ लें, उम्मीद की जा सकती है कि आप पास हो जाए, अभी तो कामयाबी के चांसेस है। लेकिन अगर ये सब कुछ किए बगैर कमरा इम्तिहान में नहीं, रिजल्ट रूम में पहुंच गए, तो वहां क्या हाल होगा? ये दुनिया कमरा इम्तिहान है, आखिरत का मंजर जो हमें दिखाया जा रहा है ये डिक्लेरेशन है, ये रिजल्ट है। तो जरूरत है इस बात की कि आज इसकी फिक्र की जाए। इसीलिए अब अल्लाह सुब्हान तआला आगे हमें कुछ और बातें सुनाते हैं, आयत 68 देखिएगा, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, और आपका रब पैदा करता है जो चाहता है और मुंतखिब कर लेता है जिसको चाहे। आपके रब के हाथ में है सब कुछ, जो आपका रब चाहे वही करता है, तो आपको क्या करना है? आपको भी वही करना है जो आपका रब आपको कह रहा है। असल में पीछे बात थी नबी सल्लम को नबी बनाने की, उसी पे इशारा है। तुम क्यों इतना इतराज करते हो इस नबी पर, मान जाओ, बस छोटी सी बात है। लेकिन जब एक इंसान नहीं मानता ना, तो फिर उसको ऐसे लगता है कि मैंने बस इस चीज में पढ़कर अपने आप को पीछे नहीं करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये उसकी च्वाइस है, जिसको चाहे चुने और फिर उसके बाद चूज कर ले। पीछे पढ़ चुके हैं सूरत हज में आयत नंबर 75, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास, अल्लाह चुन लेता है अपने पैगंबर फरिश्तों में से और इंसानों में से जिसको चाहे। سورت آل عمران آئے 33 میں بھی یہی بات ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو لفظ جو ہے نا یختار، خا یا را اس کا روٹ ہے، خیر ٹو چوز کے معنوں میں، بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو چننا. ٹھیک ہے، اہل مکہ کو اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن کسی سردار پہ کیوں نہیں اترا؟ ولید بن مغیرہ، سقفی طائف کا رہنے والا، یا کوئی اور؟ تو اس پہ یہ آیت اتری تھی کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو، یہ اللہ کی بانٹ ہے. ماں کان لہم الخیار، جبکہ ان کو تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ بہت بلند اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. تو بات کیا سمجھ آ گئی کہ اللہ جس کو چنے اس کو چن لیتا ہے. حسد تھا، بڑا ہی ماننا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی بات کر دی کہ بس تم اس کو اللہ کے اوپر رکھو. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. کیا چھپاتے تھے؟ کن کے سینوں کی بات ہے؟ لکھ لیجئے قریش مکہ. اور آج کے دور میں ہر وہ شخص جو دین سے اور نفس سلم سے حسد رکھے اور بغض رکھے. تُكِنُّ وہی بار بار آ رہا ہے اس صورت میں، آپ دیکھ رہے ہیں، کن چھپی ہوئی چیز، صدور صدر کی جمع، کسی چیز کا سامنے والا اور نمایاں حصہ. سینے میں دل ہے جو مصدر ہے، یہ جو لفظ مصدر ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے. سارے جسم کی انرجی، آکسیجن، توانائی دل کے راستے سے جاتی ہے. تو گویا کہ ان کے سینے کیا چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے تھے بغض، حسد، کڑتے تھے. مخالفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اس پر دل میں کڑتے تھے. کبھی کبھی ان کی زبانوں پہ آتا تھا تو کاوما یولینون. دل قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس گواہی کو چھپائے رہتے تھے. اعتراضات کرتے تھے کہ اچھا یہ نبی ہوتا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہو اللہ لا الہ الا ہوا، اور بالآخرتی، اور آخرت میں. اس کو بھی سمجھ لیجئے، اللہ کے لیے دنیا میں حمد کیسے ہے؟ پہلی بات ہے کہ اولا کہتے ہیں پہلی چیز کو، اول کی مؤنث، اور آخرہ آخر سے مؤنث ہے، آخرت والی. پتہ کیا چلا کہ دنیا میں بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں ہوں گی، یہ بھی مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں آخرت میں بھی وہی تعریفیں کریں گے. دوسروں کی زبان پہ آئے گا ہی نہیں نام اللہ کا جنہوں نے دنیا میں نہ کیا ہوگا. اپنے آپ سے پوچھئے، سب سے پہلے کس کا نام زبان پہ آتا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر دل میں اللہ بسا ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی یہی ہوگا. بعض دفعہ ہم بغیر سوچے سمجھے عادت کے مطابق بھی الحمدللہ کہتے ہیں نا، وہ ایسے تیسے خون میں رچا ہوا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بس سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جن کی زبان پہ یہ چیزیں آئی ہوں گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ انہی کی آئیں گی. جو دنیا میں بیٹھے اپنی دنیا کی چیزوں پہ مگن رہتے ہیں، وہ وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے. تو گویا کہ آخرت میں وہی رب ہے جو دنیا میں ہے، لہذا تم کیا کرو. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس بات پہ یقین کر لو. حکم دینے کا اختیار اس کو ہے، حاکم وہ ہے، جو چاہے کرے، کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی کو حرام قرار دے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں. آگے آپ دیکھیے گا اس اللہ کی بڑائی کا ایک مظہر جو دنیا میں ہے. آج تک اتنی ترقی کے دعووں کے باوجود کوئی اس کو بدل نہیں سکا، اور وہ کیا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کوئی نہیں بدل سکتا. آیت 71، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، آپ کہیے کیا تم نے کبھی غور کیا؟ ارأیتم جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے غور کرو، سوچو، تھنک. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ کر دے تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے. سرمدا، سین را میم دال، ربائی ہے یہ، ہمیشہ، دائمی، ایور لاسٹنگ، رات ہوئی تو رات ہی رہے. کب تک؟ الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے سوا؟ جو یاتیکم بھی دیا آئیں، جو لے آئے تمہارے پاس روشنی. افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ میں اس آیت پہ غور کر رہی تھی جب، آپ کو تھا کہ آج کل دن کتنا چھوٹا ہے، ابھی یہاں سے جائیں گے گھر جانے تک اندھیرا ہوتا ہے. شوق آتا ہے آج کل کہ سورج کی روشنی میں صفائی کریں، جو ہر چیز دکھتی ہے، ڈسٹ بھی دکھتی ہے. اور ایک فطری طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی روشنی میں جو کلیننگ کا موڈ بنتا ہے وہ رات کو نہیں بنتا. ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلنا، ٹھیک صفائی نہیں ہوگی، صبح کریں گے، سٹینز بھی نہیں دکھتے. मैं ये सोच रही थी अपने दिल में कि अगर हम एक ऐसी दुनिया में होते, पूरा वक्त रात ही होती, यकीन करें मेरा दम घुटे, मुझे ऐसे लगे कि मेरा दम निकल जाएगा। इसी तरह एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मेरे जहन में ये आसमान की नेमत और इस पे गौर व फिक्र आ रहा था, तो मैंने क्या सोचा, अब तो इतना ऊंचा आसमान है ना, हाथ रखे खुद भी उछलें कूदें फिर भी आसमान तक नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि अगर हम एक ऐसी दुनिया में होते, जैसे तो मिसाल है कि ये रूफ ले ले, जितनी ये रूफ ऊंची, बस हम सब की दुनिया ऐसी होती, हम इसी में ही सब वक्त चलते फिरते। एक अंडरग्राउंड स्टेशन सोच लें ट्रेन का, कोई बहुत बड़ा सा टनल सोच लें, नॉर्वे में तो बहुत सारे ऐसे, यहाँ भी अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है। कभी पहली दफा जो लोग जाते हैं उनको खौफ आता है कि हाँ इसमें गाड़ी जाएगी फिर हम बाहर नहीं निकल सकते, लिफ्ट में फंस जाए। तो मेरे जहन में एकदम खौफ आया कि अगर बस मेरे कद से इतना को ऊपर आसमान होता कि इससे ऊपर कुछ ना हो, दुनिया होती यही। तो मेरा सांस उखड़ने लगा, कौन है जो रात को सुबह में ढालता है, कोई साइंस की तरक्की का दावेदार, आज तक इतने सितारों पे कमंदे डालने वाले, गैलेक्सीज तक पहुंचने वाले, और आप कह सकते हैं कि खिलाई शटल में गाड़ियां छोड़ने वाले, हबल बनाने वाले, क्या रात को दिन में या दिन को रात में बदल सकते हैं? फिर कुल अराईतु मिन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहार सरमदा, कह दीजिए अगर तुमने सोचा कि अल्लाह ने तुम पर दिन को ही हमेशा रखा होता, इला यौमिल क़ियामा, रात होती ना दुनिया में, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिललैल, कौन है जो अल्लाह के सिवा जो रात लाता, तस्कुनून फी, ताकि तुम सुकून पाओ उसमें, अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर नहीं करते? व मिन रहमतिही जाल लकुमुल्लैल वन्नहार, और उसकी रहमत के मज़ाहर में से है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, लितस्कुनू फी, ताकि तुम सुकून पाओ इसमें, वलितबतगू मिन फ़ज़लिही, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इन तीन आयतों में बहुत गहरा सबक है हम सबके लिए। पहली बात तो इंसान की बेबसी, जिस पर हमने गौर किया, कायनात पे गौर व फिक्र करो। दूसरी बात हमें बताई कि ये कायनात असूलों पे चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है, तुम भी असूलों के पाबंद हो जाओ। फिर देखिए प्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सूरज कितने बजे सुबह निकलेगा, सनसेट कितने बजे होगा, हमारे बारे में लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कब हमारा मूड किस तरह का होता है, मूड स्विंग्स कितने करते हैं, हमारे मूड ही नहीं है, दिल बदल गया, हालात बदल गए, जब हम असूलों के पाबंद होंगे ना, दूसरे खुद बहुत हमारी बात मानेंगे। फिर एक और चीज इसमें बड़ी खूबसूरत, अगर आपने गौर की है कि नहीं, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए कि पहली आयत जो 71 थी उसमें रात का जिक्र था ना, तो अफला तस्माउन, रात के जिक्र में सुनने की बात है, क्योंकि अंधेरे में बंदा देख नहीं सकता लेकिन सुन लेता है। जबकि अगली आयत देखिए 72 में दिन का जिक्र है, तो तुबसिरून, देखने की बात है, एक फर्क। फिर दूसरी चीज देखिए आयत नंबर 73 में देखिएगा, लैल और नहार दोनों को जमा किया गया, तो पहले ली तस्कुनु फी ही आया, रात की चीज, फिर उसके बाद वाली तब तगु मिन फदली, इतने गहरे सबक है। रात की नींद पुरसकून होगी ना तो अगले दिन फजल ढूंढोगे, क्लास में भी फोकस्ड होगे, और पिछली रात आधी रात तक किसी पार्टी हॉल में बैठे हो तो पहली बात है तो नमाज के लिए उठोगे कोई नहीं, और उठोगे भी तो वो नमाज जो है वो पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर होती है। हदीस में आता है कि हबीसु नफ्स है वो शख्स जो सुबह देर तक सोता रहता है, देर से उठेंगे ना, हबीसु नफ्स के लफ्ज है, गंदा नफ्स है उसका जो सुबह देर तक सोता है, और जिस दिन का आगाज खबासत से हो जाए, आप बताइए बाकी दिन में बरकत कैसे होगी? वीक डेज और वीकेंड में आप ये गहरा फर्क देखेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो कितना ज्यादा हमें फायदा होता है, और जब सोए 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 रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उस सोने के अंदर हमारे लिए क्या है। हम सब अपने आप को इसकी रोशनी में देखें, हमने तो अल्लाह का यह सुल भी नहीं माना, रात आराम की दिन काम का, हम कहते हैं रात जागेंगे दिन सोएंगे, फितरत का हर इशारा ही हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते। इसीलिए बाकी अल्लाह ताला ने फिर उनके एक शिर्क का एक सिलसिला उसकी बात की, वयौमयुनादीहिम, और जिस दिन वो इनको पुकारेगा, कौन पुकारेगा? अल्लाह ताला पुकारेगा, किनको पुकारेगा? मुशरिकों को। फयकूलु, फिर वो फरमाएगा, ऐन शुरकायल्लज़ीन कुंतुम तज़उमून, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम लोगों को ज़ोम था। क्या ज़ोम था? लिखिए, ये जो बीच में मैं लफ्ज़ बोलती हूँ ना, ये आपको लिखने होते हैं, फिर मज़मून पूरा हो जाएगा आयत का, वरना बाद में आपको तर्जमा समझ आएगा लेकिन बात आपस में जुड़ती भी नहीं दिखेगी। तो किस चीज़ का ज़ोम था? कि ये कल हमें अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे। करनी वाले, बचाने वाले, बख्शाने वाले किधर है भाई? आज वो जिनकी आस पे तुम आ गए थे कि नेकियां ना भी करेंगे तो ये कल हमारी मदद कर देंगे, है ही कोई नहीं, जवाब ही नहीं है, खामोशी, नेवर नथिंग। और इतने में हम क्या करेंगे? अब ये क्यामत का मंजर है। वनजाना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम निकालेंगे हर उम्मत में से एक गवाह। कौन होगा ये? रसूल, उस उम्मत का रसूल। दो मर्तबा यही बात सूरत नाहल में हमने पढ़ी थी, आयत 84 और 89 में, और सूरत निसा की आयत 41 में तो खुल के बता दिया कि फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदा वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा। उस दिन क्या सूरत हाल होगी जब हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, और नबी हम आपको लाएंगे इनके ऊपर गवाह बनाकर। क्यामत के दिन अल्लाह की अदालत में विटनेस प्रॉफिट्स देंगे, गवाह बनकर लाएंगे कि अल्लाह हमने तो हक अदा कर दिया था लेकिन ये माने ही नहीं। कहा क्या जाएगा? फकुलना हाथ बुरहाना गुम, फिर हम कहेंगे तुम अपनी दलील पेश करो। यानी नबियों ने तो इस्तगासा दायर कर दिया, कौमों से पूछा जाएगा सुनाओ भाई तुमने क्या किया था। فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, तो वो जान लेंगे कि हक तो अल्लाह ही की तरफ से। अब क्या फायदा जानने का? जिससे रिजल्ट अनाउंस हो गया, फिर पता चला कि आपके पेपर गलत हुआ, आपके सवालों के जवाब ठीक नहीं थे, तो वो इल्म क्या फायदा देगा? इस इल्म की जरूरत तो पहले थी। وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, और गुम हो जाएगा इनसे वो सब कुछ जो वो बांधते थे, घड़ते थे। वो कहते ना कि जब आंख खुली गुल की तो मौसम था खजां का, इसी तरह जब दूसरी दुनिया में इनकी आंख खुलेगी ना तो इनके खुद साख्ता, कायद और माबूद और लाइफस्टाइल सब इनसे गुम हो चुका होगा। पहली आयत पे फिर नजर रखें, तखत्तफ में नरदीना, दीन इसलिए नहीं अपनाते कि दुनिया चली जाएगी और आखिरत में हाथों के तोते उड़ जाएंगे। यहां पे असल में सूरत पूरी हो गई है। ये जब आखिरी आयत है ना 76 से आगे, इसमें कारून को एक सिंबल बनाकर दिखाया गया। ये सूरत अब अगली सूरत से बहुत जुड़ी हुई है। इंशाल्लाह जब कल अगली सूरत का इंट्रो दूंगी तो आप इन दोनों में रब देखेंगे। लेकिन यकीन करें अगर हम इन सूरतों के थीम समझ गए ना तो फिर नई दुनिया हमें बुलाएगी, बुलाती रहे मैं नहीं बोलूंगी। दौलत का सिंबल, पीछे हमने बतिरत मई शतहा की बात की, अब इसको एक किरदार से समझे, चूंकि कहानी है इसको मैं कोशिश करूंगी ऐसी चलती जाऊं और फिर इंशाल्लाह इसमें से एंड पे मैसेजेस लेंगे। आयत 76, इन कारून कान मिन कौमी मूसा, यकीनन कारून मूसा की कौम ही में से था, बनी इसराइली था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और एक और रिश्ता भी था। यानी आप इतना लिख लीजिए दोहरी रिश्तेदारी थी हजरत मूसा के साथ इसकी। तौरात में इसका नाम आता है कौरा, QAURAH, ठीक है। कारून नाम असल में एक जरबुल मिसल भी बन गया, किरदार और रवैया दुनियादारी का। पूरे मुआशरे में ये एक नुमाइंदा है इसका कि ऐसा तबका जो किसी भी महकूम कौम के अंदर हुक्मरानों के हाथों से जन्म लेता है, इनके साये में नशोनमा लेता है। था मुसलमान अपने लफ्जों में कह लें, लेकिन फिरौन की चकाचौंध और उसकी बादशाहत और वजारत से मुतासिर हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ा, बनी इसराइल को धोखा दिया और फिरौन की आर्मी में जाके शामिल हो गया, उसका हुक्मरान बन गया था। और याद रखिए पिछली सूरत में भी पढ़ चुके हैं ना, सूरत नमल 34 में, किन्नल मलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफसदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा ज़िल्ला, कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहां फसाद बर्पा करते हैं और इज्जतदारों को जलील और दूसरा मामला कर देते हैं। तो हर जगह जहां फिरौनियत होगी ना वहां ऐसे लोग मौजूद होंगे जो लालच के लिए अपने झूठे हुक्मरानों, आमिर और डिक्टेटर्स को हिमायत देंगे और लोगों पर जुल्म करेंगे। कहते हैं कि फिरौन ने इसको माली मामला दिए हुए थे, टैक्स कलेक्टर था, आप अपनी जुबान में कह लें उमाल कहते हैं ऐसे लोगों को, वजीर खजाना कह लें आज का, इसने अपने घर पहले भरा। इस तरह से इसने दौलत जमा, इसकी दौलत का हाल क्या था अगली हिस्से पे चलते हैं, फिर इसकी किरदार पे हम बाद में भी थोड़ी सी बात कर सकेंगे। फबगा अलैहिम, लेकिन इसने उनके खिलाफ सरकशी की, यानी जब अपनी ही कौम के लोगों से जाता था माल जमा करने तो उन पर ज्यादतियां करता था, हक से ज्यादा लेता था, टैक्स ज्यादा रखे हुए थे, लोगों का गरीबों का खून निचोड़ता था। और व आतेनाहु मिनल कुनूज, और हमने इसको इतने खजाने दिए थे कंस की जमा, और कंस कहते हैं वो माल जिस पे ज़कात ना दी जाए, ऐसा माल जो झूठ से नाफरमानियों से जमा हो वो कंस होता है। कितना था वो खजाना? इन मफातिहु, बेशक इसकी चाबियां, मिफ्ताहुन की जमा मफातिहा, बिलुस्बती एक भारी जमात। उस्बा का लफ्ज कहाँ पढ़ा पहले? सूरत यूसुफ में बड़ी जमात को कहते हैं। कितनी बड़ी जमात? उलिल कुव्वा, कुव्वत वाली, ताकत वाली जमात मुश्किल से उठाती थी उसकी चाबियों को। खजानों की बात नहीं है, चाबियां। अच्छा अब चाबी आप कहते हैं चाबी कितनी को होगी, तो चाबियों से आज वाली चाबियां ना सोचिए। आप कहते हैं कि पहले दौर में बड़े बड़े ताले होते थे, फाटक थे, बाद दफा तालों को फाटकों को जोड़ने के लिए बीच में मोटे मोटे सरिये डालते थे। वो सब कुछ रखिए कि इतने खजाने थे कि खजानों की चाबियां उठाने के लिए ऊंटों की एक ताकतवर जमात थी जो इसको उठाती थी। यानी सिंबल है इस बात का, बहुत दौलतमंद था, मिलियनेरियन था, आज के दौर में आप यही कह लीजिए। अच्छा इस काल लहू कौम हो, जब उसको उसकी कौम ने कहा ला तफरह, शेहियां मत बिगाड़ो, मत इतराओ। यहां से पता चलता है कि उस दौर में भी इतने बिगाड़ के बावजूद बनी इसराइल में ऐसे लोग मौजूद थे जो इसलाह का काम करते थे। लिहाजा कौम ने उसको समझाया कि ये जो फर है ना, ये शोखियां बिगाड़ना, अपनी तारीफें सुनने का आदि शख्स फारिग होता है, जिसका दिल चाहता है कि हर वक्त लोग मेरी तारीफों के गुन गाएं, ऐसा बंदा। कौम ने समझाया कि देखो ये बतर ना करो, ये शो ऑफ ना करो, क्योंकि इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरिहीन, यकीनन अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ये नहीं अच्छी बात, ये ना कीजिए, ये बुरी बात है। कौम ने नसीहत की और साथ ही बता दिया कि दौलत अच्छी चीज है लेकिन बुरी नहीं। अब यहां से आप पांच चीजें नोट करेंगे, इसी तरतीब को जानते जाइए। खुलासा कर देती हूँ कि कारून दौलतमंद था, शोबाज था, रियाकारी करता है, और कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां बैठ के लोगों को तौरात सिखाते थे तो ये बड़े शान और ठाट के साथ अपने अच्छे कपड़ों और सवारी के ऊपर बैठकर वहां से जान के गुजरता। और फिर क्या हुआ, ये मंजर आ गया, अब आप अपनी आंखों से देखिएगा। लोगों ने इसको क्या समझाया कि देखो ला तफरख, इतराओ नहीं, ठीक है, इसको वन लिख लीजिए। दूसरा वक्त ही फी माता कल्लाहुद्दार अलाखिरता, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दी इससे दार आखरत हासिल करने की कोशिश करो। ये दूसरा असूल बता दिया, दौलतमंदों के लिए यही कीमती असूल है। नंबर एक, दौलत पाने के बाद शोखियां ना बिगाड़ो, बड़े ना बनो। दूसरी बात है कि इस दौलत के जरिए से आखरत हासिल करो। ये दुनिया आखरत की कश्ती को चलाने का पानी है, जरूरियात इस्तेमाल करो, दुनिया में अल्लाह ने दिया है इसको खर्च करो, आखिरत में रखो। सूरह तौबा आयत 11 में हम पढ़ चुके हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। तीसरा मशवरा, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, हाँ हाँ दुनिया से अपना हिस्सा लेना भी ना भूलो। ये है तीसरी नसीहत, अल्लाह ने जो दौलत हमको दी है उसको हम अपनी जात पर भी खर्च करें। इस बात से लग रहा है कि कारून कंजूस इतना था कि सिर्फ दौलत जमा करने की हिरस थी, दौलत को खर्च करने से घबराता था, तक अपनी जाती जरूरतों पे भी खर्च नहीं करता था। और सूरत अल आराफ आयत 32 में हम पढ़ चुके, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अक़रद लिइबादिहि वत्तय्यिबात मिन अर-रिज़्क़। ए नबी, ये किसने हराम की है वो जीनत जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाली थी, और किसने हलाल चीजों को भी हराम कर दिया? तो याद रखिए, जिस तरह शो ऑफ बुरी चीज है, दिखावा बुरी चीज है, इस तरह होते सोते सब कुछ हो और सिर्फ लोगों की नजरों में नेक बनने के लिए मोटा झूठा खाना पीना, ये भी पसंदीदा नहीं। ला रहबानियत फिल इस्लाम, एदाल है। सूरह फुरकान में बादुर रहमान की सिफत क्या थी? वल्लज़ीना लम युस्रिफू वलालिका कवामा, तो मिडल मिडल पे रहो, यानी दुनिया का फायदा लो, जरूरियात पे लगाओ, बीवी बच्चों को खिलाओ, रिश्तेदारों को भी दो, फिर जो आखरत बच जाए उसको आखरत के लिए जमा कर दो। अगला हुक्म, अगला मशवरा, वाहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और लोगों के साथ एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। मतलब यह कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दे दी, उसका एहसान है, तो अब सारी दौलत पे खुद सांप बन के ना बैठ जाओ, इसमें गरीबों को, रिश्तेदारों को, मिस्कीनों, मोहताजों को भी हिस्सा दो। जैसे सूरत मारिज की आयत नंबर 24 और 25 में आता है, वल्लज़ीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो लोग जिनके अमवाल में एक मुकर्रर हिस्सा है सवालियों का भी और नादारों का। और आखिरी और पांचवी नसीहत, वला तबगिल फसाद फिल अर्दी, और जमीन में फसाद मत फैलाओ, क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये पांच बातें सामने रखे ना, तो इससे हमारे जैसा बनता है, उसको नोट कर लीजिए। पहली बात देखिए, कि ये कौन सा फसाद था जिसमें फिरौन मुलव्वस था। थोड़ा सा मिस्र के माहौल को तसव्वुर में लाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिन रात के कामों में मसरूफ हैं, रिसालत की फराइज जो थे उनकी अदायगी में लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में नबी अकेला क्या करे? उस मुआशरे के बहुत थोड़े लोग हजरत मूसा का साथ दे रहे थे, काम बटा रहे थे, और जो दे रहे थे उनके पास दुनियावी रिसोर्सेज इतने नहीं थे। समझ आ रही है ना? बनी इसराइल गुलाम भी थे, मजलूम भी थे, महकूम भी थे। जबकि जो फिरौन और फिरौनी मिजाज के लोग थे वो मूसा के इस मिशन के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, नाकाम करना चाह रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह क्या चाहता था कि अहले खैर, खैर वाले कौन होते हैं? वेल्दी, दौलतमंद, मिलियनेरियन, और इन लीड्स अपने माल को मूसा के साथ लगाकर उससे दुनिया में अल्लाह का पैगाम आम करें। कारून एक सिंबल है इस बात का कि जब सोसाइटी में दीन वाले, इल्म वाले, अल्लाह की बात फैलाने वाले अपनी सर तोड़ कोशिशें करें, लेकिन माल वाले और खैर वाले अपना माल अपनी जात पे रख लें, उसको अपने ही ऊपर फिर उसी को मल्टीप्लाई और उसी में आगे से आगे बढ़ते जाएं, तो ये है फसाद फैलर। कितनों को बात समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बात समझ नहीं आई तो जरूर हमें तकाबुल करना पड़ेगा नबी सल्लम के हालात से। जो मिस्र में इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत थी, आप अल्लाह के नबी की हैसियत मक्का में रखिए। मक्का में करोड़पति लोग थे, आपको पता। और याद रखिए, कुफर और निफाक, इसके साथ दौलत बहुत होती है, क्योंकि हराम हलाल की तमीज कोई नहीं, और दौलत से मोहब्बत बड़ी होती है, सेंध सेंध के रखते हैं। इसके बरक्स हजरत अबू बकर भी बड़े दौलतमंद थे, मक्का में थे। हजरत खदीजा बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन दीनदार के पास दौलत आती बहुत है, रुकती नहीं है, वो कहीं ना कहीं चल जाती है। ये पैसे के पीर थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए। अब मदीना के मुनाफिकीन तो उससे भी सोने पे सुहागा थे, मातो यहूद भी थे, सोने का तो ये काम करते थे, हथियार बेचते थे। आज भी वेपन्स सारी कौमों को गुलाम बना देते हैं, इतने महंगे होते हैं जिसको लोग खरीदते हैं। बिल्कुल इसी तरह सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 12 में, व इज़ाकील लहुम ला तुफ्सिदु फिल अर्दी क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम अल-मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून। यही फसाद नबी सल्लम के दौर में था कि जब माल वाले अपना माल दीन को फैलाने या दीन को पनपने पर लगाने की बजाय अपनी नुमाइश, अपनी गाड़ियां, अपनी शादियां, अपने जेवर, कपड़े और खूब और अपने ही कर्जे उतारने के शौक में और कर्जों में मुब्तला होते जाए, तो ये है फसाद फिलरती। आज ये फसाद दिखता, एक तरफ गरीब को खाना नहीं मिलता, बगैर रोटी के उसके बच्चे सो रहे हैं, और वही गरीब किसी ऐसे बंदे की गाड़ी चला के आया कि जिन्होंने एक शादी पे 10 लाख रुपया लगा दिया एक दिन के खाने पे। ये है फसाद। फिर कई तो गुस्से में आके छुरी लेके जाते हैं, मालिक को मारते हैं, कहते हैं जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो तेरे क्यों इतने खाएं। और जब फिर वो नौकर से तनख्वाह पे 5-5, 10-10 रुपये की बात पे भी झगड़ा करे तो जमीन में क्लासिफिकेशन हो जाती है। अल्लाह का दीन क्या है? हर बंदा अपने हिस्से का हिस्सा डाल दे। जिसके पास इल्म है वो इल्म दे दे, जिसके पास जगह है वो जगह दे दे, जिसके पास माल है वो माल दे दे, जिसके पास वो भी नहीं है वो अपनी जान लगा दे, वक्त लगा दे, सेहत लगा दे। ये चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हो। हजरत मूसा के एक तनाजर में भी इसको समझिए, इन 5 नसीहतों को सामने रखिए, तो आप समझ लीजिए कि हजरत मूसा के दौर में दीन क्यों गालिब नहीं हुआ। कारून जैसे साथी थे उसके पास, थे बनी इसराइली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कैसे जल्दी पनपा? अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, छोटा बड़ा हर बंदा अपना हिस्सा डाल डाल के बैठा हुआ है कि भाई कुछ करके जाना है, अपना हिस्सा डालना है। आप यहाँ ये 5 पूरी आयतों के टुकड़ों के लिए इसमें, और बल्कि मैं चाहूंगी कि असाइनमेंट में जरूर आपको ये सवाल दिया जाए, दौलतमंदों को 5 नसीहतें कौन सी इन आयतों की रोशनी में लिखें। और आपने बिल्कुल ये आयत ही लिखनी है, ला तफ्रख इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन वब्तगी फी मा आताक अल्लाहुद्दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिन दुनिया वक्सन कमा अक्सन अल्लाह इलैक और वला तबगिल फसाद फिल अर्दी इन अल्लाह युहिब्बुल मुफ्सिदीन। कोई करोड़पति है, लाखपति है, वो मिलियनेरियन है, अगर ये 5 काम वो इस पे अमल करता है तो वो दौलत उसके लिए मुबशरात है, खुशखबरी है। इनमें एक चीज भी कमी बेशी होती है ना तो फसाद है। आज फसाद जी हमारी मुल्कों में, और मुसलमानों का फसाद तो ज्यादा बुरा। कितना खूबसूरत मशवरा दिया कौम ने, लेकिन इसका हाल सुन लीजिए,